Body. Grivarata Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Kunja Bihari Jai Gopi Jana Vallabha Grivara Dhari Jai Gopi Jana Vallabha Grivara Dhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Vrindavan Bihari, Radha Vrindavan Bihari, Radha Vrindavan Bihari Radhe. Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Lalita Devi. Radha Madan Mohan Jaya Giri Govardhan Giri Govardhan Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Nittai Gaurango Nittai Gaurango Nittai Gaurango Gaurahari Patita Pavana Gaurahari Nadia Bihari Gaurahari Daya Satchinandana Gaurahari Nittai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Gurudev.
Harinam Sankirtan Yajna Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Abhi hum shlok padhenge. Skand 5 Adhyay 21. Shlok Kramank 17. श्लोक लिखा है मैं गाऊंगा आप मेरे पीछे दोहराएंगे तथा वाले किले ऋषियों अंगुष्ठ पर्व मात्रा षष्टि सहस्त्राणी पूरत सूर्य सुक्त वाक्य नियुक्ता संस्तुवन्ति तथा वाल्यकिले ऋषियो अंगुष्ठ पर्व मात्र षष्टि सहस्त्राणि पूरत सूर्य सुक्त वाक्य नियुक्ता संस्तुवन्ति तथा वाले किले ऋषियो अंगुष्ठ पर्व मात्र षष्टि सहस्त्राणि पूरतम सूर्य सुक्त वाकाय नियुक्ता संस्तुवन्ति तथा वहाँ वाले किले नामक ऋषि महान ऋषिगण अंगुष्ठ पर्व मात्रा अंगुट्टे के आकार वाले षष्टि सहस्राणी 60,000 पूरत सामने सूर्यम सूर्यदेव सुक्त वाकाय सुस्पष्ट बोलने के लिए नियुक्ता नियुक्त किए गए संस्तु मंस्ति स्तुति करते हैं। अंगूठे के आकार वाले वल्ली के लिए नामक 60,000 ऋषिगण सूर्य के आगे रहकर उनका स्वस्ति वाचन करते हैं। अभी 18 नंबर का श्लोक सिर्फ मैं पढ़ूंगा, आप सुनिए। तथा अन्य ऋषि गंधर्व अप्सरम नागा ग्रामण्य यातुधानम देवा इति एक एकश गणा सप्त सुदर्शन मासी मासी भगवंतम सूर्यम आत्मानम नाना नाना पृथक नाना नामानम पृथक कर्मा भी द्वंद्वश उपासते। अनुवाद। इस प्रकार अन्य मुनि गंधर्व अप्सरा नाग यक्ष राक्षस तथा देवगण जो संख्या में 14 है किंतु दो दो के जोड़े में विभाजित है प्रतिमास नया नाम धारण करके अनेक नामधारी सर्वाधिक शक्तिमान देवता सूर्य के रूप में श्री भगवान की आराधना करने के लिए निरंतर विभिन्न कर्मकांडों में से उपासना करते रहते हैं। तात्पर्य, विष्णु पुराण में कहा गया है स्तुवन्ति सूर्यम सूर्य गंधर्व गीयते पुर नृत्यन्तो अप्सरसो यान्ति सूर्यस्यानो निशाचर वहन्ति पत्रका यक्षे क्रियते भिषु संगाह वाल्यकिल्यशास्तवेन परिवारे समासते सो अयम सप्तगण सूर्यमंडले मुनिसप्तम हिमोष्णवरिवृष्टिना हेतुत्वे समयगत। सर्वशक्तिमान सूर्यदेवता की आराधना करते समय गंधर्व उनके समक्ष गाते हैं, अप्सरा रथ के समक्ष नाचती हैं, निशाचर रथ का पीछा करते हैं, पन्नग रथ को सजाते हैं, यक्ष रथ की रक्षा करते हैं और वाल्मीकि नामक ऋषिगण सूर्य देवता को घेर कर स्तुति करते हैं। 14 सहयोगों के साथ जोड़े ब्रह्मांड भर में हिम ताप वर्षा का उचित समय निश्चित करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। ओम नमो वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का यहाँ पे स्वागत है भागवतम की कक्षा में। तो ये जो भागवतम का पंचम सत्र स्कंद का जो ये चल रहा है 21वां अध्याय, तो इसमें सूर्यदेव की गतियों का वर्णन किया है। मतलब ये ब्रह्मांड जो है ना, इसमें एक सूर्य है ना, सूर्य देवता। तो पिछले कई श्लोकों से जम्बूद्वीप का वर्णन है ना, भूमंडल का वर्णन, तो अनेक अनेक वर्णन चल रहे हैं। ये सब भौतिक ब्रह्मांड के बारे में है। तो प्रभुपाद एक बार 66 शहर में, अमेरिका में, एक प्रवचन में बोल रहे थे कि जो भौतिक प्रकृति है ना, वो भी भगवान श्री कृष्ण की भक्त है। और वो भी क्या करती है, हमें भक्ति में लाती है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जो है ना, हम सबको प्रचार करते हैं, किताबें दी है हमको, मंदिर दिया है, भक्त को संग दिया है, और प्रचार करते हैं हमें, और हमें भक्ति में लाते हैं। उसी तरह ये प्रकृति, भौतिक प्रकृति भी, ये भी भगवान श्री कृष्ण की भक्त है, और वो भी हमें भक्ति में लाती है। लेकिन उनका तरीका थोड़ा अलग है ना भक्ति में लाने का। तो पहले तो बोलती कि आप माया का भोग करो, ऐसे बोलती प्रकृति। फिर हम माया का भोग करते हैं, और फिर त्रिशूल लेके पीछे हमें जन्म मृत्यु जरावादी का कष्ट देती है। फिर त्रिशूल के तीन जो धार होती है ना, तो आदिदैविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक, तीन ताप हमें प्राप्त होते हैं। तो एक तरह से हमें लत्ता प्रहर प्राप्त होता है पीछे से है ना। और फिर अनेक जन्म हम प्राप्त करते हैं, कभी मनुष्य का, कभी गधे का, कभी सुअर का। तो अनेक अनेक जन्म में अनेक बार हमको ये कष्ट प्राप्त होते हैं, और कष्ट प्राप्त होके फिर हमको समझ में आता है कि क्या है ये सब है ना सब। तो इस तरह भौतिक प्रकृति भी क्या करती है हमें, इस तरह विधि अलग है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि आप हमारा विधि अपनाना चाहते नहीं हो, तो भौतिक प्रकृति का विधि अपनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं ना तो इस तरह। तो अभी इस जो श्लोक में ये जो सूर्य देवता है ना, तो इनके बारे में इधर चर्चा आ रही है। तो ये जो सूर्य देवता का जो रथ होता है ना, वो जो सूर्य देवता का रथ है, इसका जो लंबाई है रथ की, तो अभी अर्जुन का रथ हमने चित्र में देखा है। हम कभी रथ यात्रा निकलते हैं तो रथ होते हैं हमारे, है ना, हमारा कितना रथ होता है, छोटा होता है ना। तो ये जो सूर्यदेव का रथ है, तो ये 36 लाख योजन लंबा है। सूर्यदेव का रथ कितना है, 36 लाख योजन लंबा है, दिया है भागवत में। एक योजन मतलब 8 माइल होता है। एक योजन कितना, 8 माइल। और एक माइल 1.6 किलोमीटर होता है। एक माइल कितना होता है, 1.6 किलोमीटर। तो ऐसा 36 लाख लंबा सूर्यदेव का बैठने का जगह है रथ ऐसा। और उसका जो विड्थ है वो 9 लाख योजन लंबा है ऐसा विड्थ, रुंदी। तो इतना ऐसा सूर्य का रथ होता है, और उसके ऊपर सूर्य देव विराजमान होते हैं। तो ये सूर्यदेव के रथ के बारे में इधर बताया है। और सूर्यदेव का जो चक्र होता है, सूर्यदेव का रथ के लिए चक्र होता है ना, तो सूर्यदेव के रथ को एक ही चक्र है। कितने चक्र है, एक ही, और उसका नाम है संवत्सर। तो वो जो रथ जो है ना का चक्का है, वो 12 मास रूपी आरी से बना है। मास रूपी आरी, हमारे मास कितने होते हैं, 12, और ऋतु कितने हैं, छह रूप रूपी धावा है, उनकी धाव है। और चातुर्मास 3 नाभि भाग है अंदर का, सेंटर नाभि भाग, तीन है चतुर्मास, चार 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 12 होते हैं, 6 × 6 12 होते हैं, और ऋतु कितने हैं, 12 आरी है। ऐसा रथ का चक्का है। और ये सूर्यदेव भूमंडल के ऊपर 1 लाख के वजन घूमता है। ये जो सूर्यदेव है ना, इतना ऐसा घूमता है। अभी ये जो भौतिक ब्रह्मांड है ना, ये पूरा हमारा भौतिक ब्रह्मांड, तो वो अंडे के आकार का है, और उसका जो विड्थ होता है ना भौतिक ब्रह्मांड का, तो विड्थ मतलब व्यास होता है ना, एक होता है सर्कल का त्रिज्या और एक होता है व्यास। तो व्यास 50 कोटि योजन है ब्रह्मांड का, कितना 50 कोटि योजन, और योजन माइल किलोमीटर का मैंने आपको बता दिया है। एक योजन मतलब 8 किलोमीटर और एक 8 माइल्स और 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। तो ये जो ब्रह्मांड का व्यास है 50 कोटि योजन है, और ये एक परिक्रमा करता है सूर्यदेव एक दिन में, एक बार 24 घंटे में एक परिक्रमा होती है सूर्य की भूमंडल को ऐसा अंदर। तो उसका जो परिक्रमा का जो मार्ग होता है ना, जैसा आप बम्बई जा रहे हो यहाँ से, तो आप पूछते हो कितने किलोमीटर है बम्बई, तो ये जो रथ पूरा परिक्रमा करता है ना भूमंडल का, तो उस परिक्रमा का जो लंबाई है परिक्रमा करने का, वो 9,51,00,000 योजन है। वो कितना 9,51,00,000 योजन है परिक्रमा का लेंथ, ऐसा सर्कल सर्कल में परिक्रमा करता है। तो वो जो हमारा जो पूरा भूमंडल है ना, भूमंडल हम मैंने बताया अंडा के आकार का है ना, अगर उसको हम सेंटर से काट देते हैं अंडे भूमंडल को, तो ऊपर का हिस्सा ऊपर गया, अभी नीचे का जो हिस्सा जो पृष्ठभाग है उसका, उसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। तो पृष्ठभाग का जो सेंटर होता है, सेंटर सेंटर में एक ऐसा मेरू पर्वत है माउंट मेरू, भूमंडल को हम काटे अभी डिस्कशन के लिए, हमको समझने के लिए, तो हम ऐसा काटे हैं और सेंटर में एक माउंट मेरू है, जैसा कि घाने का बैल होता है ना, तो सेंटर में एक लकड़ी का खंभा होता है ना, उसी तरह एक माउंट मेरू नाम का पर्वत है, और वो पर्वत सोने का है। कैसा है? सोने का है, और उसका नीचे जो विड्थ है पर्वत का वह है 16,000 योजन। कितना? 16,000 योजन, और ऊपर बड़ा है, ऊपर 32,000 योजन है विड्थ उसका, मतलब वो जो पर्वत ऐसा गया है ऐसा, नीचे 16, नीचे एक्चुअली पर्वत नीचे बड़ा रहता है ना और ऊपर छोटा होता है, लेकिन ये माउंट मेरू पर्वत ऊपर 36,000 योजन है और नीचे 16,000, और इसका लंबाई जो है इस पर्वत का माउंट मेरू का वो है 84,000 योजन लंबाई। कितना? 84,000 योजन, और उसमें से 16,000 योजन वो भूमंडल के अंदर है, वो भूमंडल के अंडर है। भूमंडल मतलब पृथ्वी नहीं, पृथ्वी तो इतना एक टिंब है उसमें भूमंडल में, है ना। भूमंडल बहुत बड़ा है, तो बहुत बार लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ये भूमंडल मतलब पूरा पृथ्वी, ऐसा नहीं है। ये पूरा ब्रह्मांड को हम जब आधा काटते हैं तो एक एक रुपये का आकार का जो दिखता है पृष्ठभाग, वो भूमंडल है, और वो बहुत बड़ा है। वो जो 1 रुपये का जो व्यास मैंने बताया, जो व्यास जो है ना उस 1 रुपये का मैंने कितना बताया, 50 कोटि योजना बताया ना ब्रह्मांड का व्यास, वो जो 1 रुपया मैं बता रहा हूँ उसका जो व्यास है, एक होता है त्रिज्या और व्यास, वो 50 कोटि योजन है 1 रुपया, इतना बड़ा वो रुपये है। और रुपये में जो भूमंडल होता है ना, वो सेंटर में ऐसा ऊपर आया है पूरा पृष्ठभाग, जैसे छतरी के आकार का होता है ना, छतरी कैसे होती है ऐसे होती है ना, तो पूरा भूमंडल एक छतरी के आकार का है ऐसा, और सेंटर में वो माउंट मेरू है। माउंट मेरू नीचे 16,000 ऊपर 32,000 है ना, उसका हाइट 84,000 है ना, और वो 16,000 अंदर गया है भूमंडल के अंदर। और वो जो माउंट मेरू है ना, तो उसको जो एक सर्कल के आकार का एक भाग है, तो उसको बोलते हैं जम्बूद्वीप। वो सर्कल के आकार का जो पृष्ठभाग है, जैसा कोई हमारा महाराष्ट्र है ना, तो वो महाराष्ट्र का हम भाग बोलते हैं कि इतना इतना हमारा महाराष्ट्र है। तो उसी तरह वो जो जम्बूद्वीप का जो एरिया है, जो माउंट मेरू के सामने सर्कल है ना पूरा, हर कोई सर्कल है इधर भूमंडल में, हर कोई भाग कैसा है सर्कल क्या करे। तो भूमंडल का जो जम्बूद्वीप का जो हिस्सा है ना वो सर्कल की तरह है, और सर्कल के एंड में एक चंडू है छोटा सा, जो जम्बूद्वीप है ना जिधर एंड होता है और समंदर लगता है ना, तो उस समंदर को टच होके एक चंडू है, वो है पृथ्वी। और उस जम्बूद्वीप में 9 वर्ष है, 9 वर्ष मतलब एक जो भाग होता है ना, जैसे हमने महाराष्ट्र बोला तो महाराष्ट्र भाग को इधर संस्कृत भाषा में वर्ष बोलते हैं, मतलब एक पृष्ठभाग जो होता है ना, ये बाबा ये महाराष्ट्र का एरिया है ऐसा हम बोलते हैं ना, तो उस एरिया को वर्ष नाम दिया गया है। तो जम्बूद्वीप में एक भारतवर्ष है जम्बूद्वीप में, और भारतवर्ष और भारतखंड अलग है। तो भारतवर्ष एक हिस्सा है छोटा सा, और भारतवर्ष को एंड को भारतखंड है, भारतखंड बोले तो पृथ्वी, क्या है भारतखंड बोले तो पृथ्वी। और भारतवर्ष जो है भारत इसमें पर्वत है, एक एक भारतवर्ष हो गया तो उसको एक पर्वत है, वो उसको बोलते हिमालय, मतलब हमारा हिमालय जो पृथ्वी का तो छोटा हिमालय है, तो भारतवर्ष को एक ऐसा हिमालय आता है ना। फिर हिमालय जो पर्वत हो गया ना, फिर उसके बाद जो है किम पुरुष वर्ष करके एक एरिया है थोड़ा पट्टा, फिर उसके बाद और एक पर्वत है वो हेमकूट पर्वत है, फिर उसके बाद हरिवर्ष आता है, फिर उसके बाद एक पर्वत है निषाद पर्वत आता है, फिर माउंट मेरू कहिए इधर का भाग हुआ साउथ का, फिर ऊपर के भाग वो शुरू में एक पर्वत लगता है जिसको बोलते हैं नीम नील पर्वत, फिर रम्यक वर्ष है, फिर श्वेत पर्वत है, फिर हिरण्यमय वर्ष है, फिर श्रृंगावन पर्वत है, और फिर कुरुवर्ष है। तो सब मिला के भद्रावर्ष ये साइड में, और इस साइड में केतुमाल वर्ष, तो इस तरह 9 वर्ष है इसमें, मतलब जो एक सर्कल मैंने बताया जम्बूद्वीप का उसमें कितने वर्ष है 9 वर्ष, और 6 पर्वत है, और ये 2, 6, 2, 8 पर्वत है ऐसा। तो ये हो गया जम्बूद्वीप का वर्णन। फिर जम्बूद्वीप का जब सर्कल खत्म होता है फिर उसके बाद जो है एक सागर लगता है, मतलब एक ऐसा पट्टी जैसा रहता है ना, फिर अभी और एक द्वीप आएगा लेकिन बीच में सर एक पट्टी आएगा जिसको बोलते हैं सागर, तो उस सागर का नाम क्या है लवण सागर। फिर उसके बाद एक द्वीप आता है तो उस द्वीप का नाम है प्लक्षद्वीप। फिर उसके बाद फिर एक समुन्द्र का पट्टा आता है, और ये सब सर्कुलर है, वो सब जो मेरू पर्वत सेंटर में है ना मेरू माउंट मेरू, फिर उसको सर्कुलर। तो अभी मैंने क्या बताया प्लक्षद्वीप बताया, प्लक्षद्वीप के बाद गन्ने का रस का सागर है, क्या है गन्ने के रस का सागर। फिर श्यामलद्वीप है, फिर श्यामलद्वीप के बाद सुरा का सागर है, सुरा मतलब दारू मध्य, तो उसका सागर है। फिर कुशद्वीप है, फिर कुशद्वीप के बाद घी का सागर है, तूप का सागर। फिर उसके बाद क्रौंचद्वीप है, फिर क्रौंचद्वीप के बाद क्षीर सागर है, क्षीर सागर मतलब दूध क्षीर को दूध बोलते हैं ना, दूध का सागर। फिर शाकद्वीप है, फिर उसके बाद दह्याचा सागर है, दही का सागर है। फिर उसके बाद पुष्कर द्वीप है, फिर पुष्कर द्वीप के बाद मीठे पानी का सागर है। तो ये सब मिला के 7 सागर और 7 द्वीप है ऐसा सर्कुलर पूरा। तो जो जम्बूद्वीप है ना वो मेरू माउंट मेरू है ना पर्वत से, तो वो है 1 लाख योजन ऐसा उसका रेडियस बोलते हैं ना हम, तो है 1 लाख योजन। फिर जो उसके बाद लवण सागर भी 1 लाख योजन का है। फिर प्लक्षद्वीप 2 लाख योजन है, मतलब इसके डबल। फिर उषाचार रस जो है उसका जो सागर का लंबाई है फिर 2 लाख योजन है। फिर इसे डबल श्यामलद्वीप है वो 4 लाख का है। फिर सुरा का सागर है 4 लाख का। फिर कुशद्वीप है 8 लाख का। फिर तुपाक घी का सागर है 8 लाख का। फिर क्रौंचद्वीप है 16 लाख, मतलब हर एक दूसरे से डबल है। फिर क्षीर सागर 16 लाख का है। फिर दूध का जो सागर है ना क्षीर सागर, मतलब वो 16 लाख हो गया। फिर शाकद्वीप है 32 लाख। फिर दही का सागर है 32 लाख। फिर पुष्कर द्वीप है 64 लाख। फिर मीठे पानी का सागर है 64 लाख। ये हो गया ये ब्रह्मांड पूरा, ब्रह्मांड नहीं सॉरी भूमंडल। अभी सबसे आखिरी में मैंने क्या बोला स्वीट, हाँ मीठे पानी का सागर, तो उससे पहले एक पुष्कर द्वीप आता है। पुष्कर द्वीप मतलब माउंट मेरू है ना, माउंट मेरू के सबसे आखिरी वाला एक द्वीप जो सर्कुलर है, जैसे ये माउंट मेरू है, फिर ये जो पुष्कर द्वीप सबसे आखिरी वाला द्वीप का है सर्कुलर ना, उसके सेंटर में एक मानसोत्तर पर्वत आता है, उसके सेंटर में क्या आता है, मानसोत्तर पर्वत, वो भी सर्कुलर है पर्वत पूरा, उस पर्वत के ऊपर ये सूर्यदेव का रथ चलता है ऐसा पूरा, उस माउंट मेरू को पूरा प्रदक्षिणा डालता है। और मैंने बताया कि छतरी के आकार का है ना ये ब्रह्मांड, तो ऊपर कैसा ऐसा है, जब सूर्य देवता इधर ये साइड में होता है ना, तो छतरी बीच में ऊपर है ना, तो ये साइड में अंधेरा होता है, तो इधर का जो हिस्सा है माउंट मेरू की वो क्या हो गया, रात हो गई, और जिधर सूर्य का हिस्सा है वो दिन, और सूर्य देवता का रथ ऐसा चलता है, तो अगर इधर आया सूर्य तो वो हिस्से में दिन होता है और ये साइड में रात होगी। इस तरह सूर्य देवता जो है ना घूमता है, और सूर्य देवता का जो ये जो मानसोत्तर पर्वत है ना, तो मैंने बताया वो जो रथ जो है ना वो 36 लाख योजन लंबा है, 9 लाख योजन है ना वो, तो इस तरह ये सब इंफॉर्मेशन इधर भागवतम में दिया है सूर्य देवता के बारे में। और ये जो सूर्य देव का जो रथ होता है ना, वो मैंने बोला उसको एक ही चक्र होता है, बोला ना, तो आप सोचेंगे कि एक चक्र फिर खड़ा कैसे रहता है, किसी भी रथ को 4, 6, 8 ऐसा चक्र होता है ना, लेकिन उसको क्या है, एक ही चक्र है। और उसका जो एक्सल है ना, एक्सल या रथ को रथ का रथ के नीचे ऐसा ये रहता है ना बीच में, वो एक्सल एक नीचे माउंट मेरू को कनेक्टेड है, किधर कनेक्टेड है रथ का, हाँ तो वो खड़ा रहता है, तो एक्सल किधर कनेक्ट है, वो सोने का जो पर्वत मैंने बताया सेंटर में, तो उधर वो एक्सल कनेक्टेड है। और एक्सल का थोड़ी देरी के बाद दूसरा एक एक्सल कनेक्टेड है, वो डायरेक्ट वहां से ध्रुव लोक को कनेक्टेड है, दो एक्सल है सूर्यदेव के रथ को, तो एक एक्सल जो हॉरिजॉन्टल है, तो सूर्यदेव का जो रथ का चक्का है वहां से जो स्टार्ट होता है कनेक्ट बॉटम ऑफ माउंट मेरू, हाँ, और फिर 1/4 एरिया पे दूसरा जो एक्सल होता है वो सीधा कनेक्टेड किधर है, ध्रुवलोक। और ये ध्रुवलोक किधर आता है मालूम है, जो माउंट मेरू है ना, माउंट मेरू से सीधा ओलंबे में ऊपर, वो ध्रुवलोक और माउंट मेरू है ना एक ही जगह पे रहते हैं, वो घूमते नहीं, बाकी सब ग्रह तारे सब घूमते हैं, लेकिन माउंट मेरू और ध्रुवलोक जो है ना, माउंट मेरू नीचे और ध्रुवलोक ऊपर, और ऊपर से ओलंबा टपकाया समझो, अभी बिल्डिंग लाइन का कोई होगा तो ऊपर से अगर ओलंबा टपकाया तो कहाँ गिरेगा, माउंट मेरू के सेंटर में गिरेगा उधर, और सब इसके माउंट मेरू और ध्रुवलोक है ना, सब जितने भी घूमने वाले ग्रह है, सूर्य है चंद्र है, सब इसके घूमते हैं उसको सेंटर में लेके, है ना, अलग अलग कक्षा में सब घूमते हैं। ये इस तरह ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है। अभी हमारे साइंटिस्ट जो है ना वो करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं सब इन्फॉर्मेशन लाने के लिए, है ना। तो अभी प्रभुपाद ने बोला है कि ये जो सूर्य देवता होती है ना, तो वहाँ भी जीव है, लेकिन उनका जो मेन ये है ना किससे बना है, जैसे हमारा पृथ्वी बना है ना, उसका जो पृथ्वी जलाग्नि इससे बना है ना, पृथ्वी मुख्य भाग है, वैसे उधर जो सूर्य देवता है ना उसका जो मटेरियल है वो अग्नि है, डेंस अग्नि सूर्य देवता का। और जो चंद्र होता है ना, चंद्र डेंस वाटर, जैसे डेंस वाटर मतलब बर्फ से भी डेंस, इससे चंद्र बना है, चंद्र का मेन। अभी इस पृथ्वी में भले पानी भी है एक्चुअली थोड़ा सा, लेकिन मुख्य मटेरियल क्या है, पृथ्वी है ना, पृथ्वी का जो जमीन होता है ना ये मुख्य मटेरियल है। और सूर्य का क्या मुख्य मटेरियल है, सूर्य देवता के उधर अग्नि, और चंद्र का मुख्य मटेरियल क्या है, पानी, इस तरह बताए। तो हर जगह पे ये है, जीव जंतु है, तो इस तरह ये सब बताया है भागवतम में। अभी इस एक श्लोक में हमने चर्चा किया कि ये 60,000 ऋषि ये सूर्य देवता के रथ के सामने सूर्य देवता का गुणगान करते हैं, और उनका आकार अंगूठे के इतना है, ऋषि कितने हैं 60,000 रथ के सामने, रथ तो मैंने बताया कितना लंबा है, और ये अंगूठे के आकार के ऋषि मुनि हैं। तो जो ये जो ऋषि है ना अंगुष्ठी वाली किले नाम के ऋषि मैंने बताया ना, वाली किले नाम के ऋषि, तो वो जो एक दक्ष प्रजापति है ना और क्रिया उनकी पत्नी, तो तो उनसे एक सन्नति नाम की पुत्री हुई, दक्ष और क्रिया से सन्नति नाम की पुत्री हुई, और फिर सन्नति का क्रतु ऋषि से विवाह हो गया, और सन्नति और क्रतु से ये 60,000 वाले के लिए नाम के पुत्र पैदा हुए, जिनका आकार अंगूठी का आकार का है, छोटा सा है। फिर एक दूसरी कथा ऐसी आती है कि कश्यप मुनि और आदिति जो है ना, तो एक बार पुत्र कामना का यज्ञ कर रहे थे, पुत्र कामिष्ट यज्ञ कर रहे थे पुत्र कामना के लिए, कश्यप मुनि और उनकी पत्नी आदिति, जितने भी देवता है वो सब कश्यप मुनि और आदिति से पुत्र है, और एक दिति नाम की भी पत्नी है कश्यप मुनि की, उनसे असुर पैदा हुए। तो एक बार ये यज्ञ चल रहा था, तो इस यज्ञ में ये 60,000 वाले के लिए ऋषि और इंद्र दोनों भाग लिया था हेल्प करने के लिए। तो कश्यप मुनि ने उनको संविदा लाने के लिए कहा, दोनों को, इंद्र को भी और इन ऋषियों को भी। अभी ऋषि का आकार कितना है, छोटा है, तो वो संविदा कुछ मटेरियल है यज्ञ का, तो लाने के लिए बोला। तो इंद्र ने तो ढीक लाया, वो तो शरीर बड़ा है ना, लेकिन ये एक एक फाटा लेके आए, मतलब फांदी एक लेके आए। तो इंद्र थोड़ा उनके ऊपर हंस गए, एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा लेके आए ना, और इंद्र ने ढीक लगा दिया था, तो उन्होंने थोड़ा उनका टिंगल किया, ऐसा बोल सकते हैं अपन, किसका, ऋषियों का। तो ऋषि ये 60,000 ऋषि क्रोधित हो गए, और फिर यज्ञ चालू किया उन्होंने बड़ा, और यज्ञ करके उस यज्ञ इस कामना से कर रहे थे कि जो इंद्र है ना, इसे सौ गुना दूसरा इंद्र पैदा करेंगे इस यज्ञ से, और इंद्र का वध करेंगे। तो इस तरह एक एक ये कामना रख के वो स्वाहा स्वाहा कर रहे थे पहले, ऐसा होता। तो फिर वो कोई सीनियर उनके गुरु ये सब आ गए उधर, और फिर समझाया बुझाया, ये ऋषि वल्ली के लिए नाम के ऋषि भी, फिर उनको माफ सॉरी इंद्र भी उनको माफ करने को बोला, इसको इसको वाली के लिए, फिर ये शांत हो गए। लेकिन उस जो यज्ञ से जो है ना, एक एक पुत्र बाहर आया। अभी यज्ञ तो कर रहे थे, तो जो पुत्र था वो बहुत शक्तिशाली था, और वो था गरुड़, गरुड़ जी, जो कौन है, भगवान श्री कृष्ण के वाहन है, विष्णु के। और फिर उस गरुड़ का एक भाई है, उनका नाम है वरुण देव, गरुड़ जी के बड़े भाई का नाम क्या है, वरुण देव। और वो जो वरुण देव है ना, ये जो सूर्यदेव का रथ चलाते हैं, अभी घोड़े कितने योजन होंगे, उनका जो दूरी होता ना रथ का, वो कितना योजन होगा, कितने किलोमीटर का होगा, तो ये सब आप कल्पना कीजिए। और इस तरह ये जो सूर्यदेव जो है ना, तो ये जो सूर्य देवता का जो रथ है वो मानसोत्तर पर्वत के ऊपर घूमता है, मानसोत्तर पर्वत के ऊपर ऐसा घूमता है सूर्यदेव का रथ। अब जो भूमंडल का मैंने बताया, तो सबसे आखिरी में स्वीट पानी का सागर है, फिर उसके सबसे आखिरी में एक लोकालोक पर्वत है। कौन सा पर्वत, लोकालोक पर्वत। अभी लोकालोक पर्वत कैसा है, वो भी सर्कुलर है ऐसा, और वो उस पर्वत का जो ऊंचाई है वो माउंट मेरू से भी ऊपर है। मतलब आप एक प्लंबिंग का जो पीवीसी पाइप का एक कैसा होता है पीवीसी पाइप, और उसका कट करो इतना पीवीसी पाइप, पीवीसी पाइप होता है ना, उसको कट किया तो एक पीवीसी पाइप का इतना टुकड़ा है ना, उस तरह का आकार है उस इसका पर्वत का, किसका, लोकालोक पर्वत का। अभी एक पीवीसी पाइप का जो टुकड़ा है ना, उसका लंबाई ध्रुवलोक से भी ऊंचा है। तो वो ऐसा आखिरी में वो पूरा जो भौतिक ब्रह्मांड है, ये अपना भूमंडल है, भूमंडल है, उसके बाद भूवरलोक आता है, फिर उसके बाद स्वर्गलोक आता है, फिर सत्यलोक तपलोक जनलोक, ये सब उसके अंदर है। मतलब ये ध्रुवलोक है ना, ध्रुवलोक तक पूरा कवर करता है ऊपर, भले चार जो ऊपर के लोग है ना वो थोड़े ऊपर है ध्रुवलोक के, लेकिन ये लोकालोक पर्वत ऐसा बिठाया है ना भगवान ने। तो सूर्य जब घूमता है ना, तो सूर्य प्रकाश होता है सूर्यदेव का, तो हर जगह पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है सूर्य प्रकाश का, ऐसा नहीं होता कि किधर ज़्यादा तप रहा है किधर कम हो गया। और लोकालोक पर्वत नाप जो होता है ना, तो मतलब वो पर्वत के बाहर जो कुछ ये नहीं है, जीव नहीं रहता, सभी जितने भी जीव है सब लोकालोक पर्वत के अंदर है। और सूर्य का प्रकाश लोकालोक पर्वत ऐसा अड़ाता है ना, हर जगह पे लोकालोक पर्वत है, तो इस तरह सूर्य प्रकाश का एक तरह से कंट्रोल हो जाता है ब्रह्मांड को। और इस पूरा जो ब्रह्मांड मैंने बताया ना, इसमें कितने लोगों से मिला के मुख्य 14 लोकों में विभाजन होता है ना। तो जो भूमंडल अभी मैंने बताया छतरी के आकार का होता है, तो उसके नीचे 7 बिल स्वर्ग बोलते हैं, 7 लोक है ना? तो अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल है ना। तो ये 7 जो लोक है, मतलब जो भूमंडल का हिस्सा है ना, तो भूमंडल के अंदर है वो, एक भुयार जैसा है ना वैसा, उधर सूर्य का प्रकाश पहुंचता नहीं है। तो उधर जो जो प्रकाश होता है ना, तो वहाँ पे जो सांप होते हैं उनका एक मणि होता है इधर, तो मणि से वो सब प्रकाशित होते हैं ये नीचे के लोग। और ऐसा उनको बिल स्वर्ग भी बोला जाता है, क्योंकि उधर भोग की बहुत सुविधा है, बड़े बड़े महल है, सब असुर लोग उधर रहते हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, रसातल और पाताल। और पाताल के नीचे नरक लोगों का वर्गन आएगा आगे, पाताल के नीचे नरक लोग है, तो उधर बहुत पापी लोग फिर नरक में डाल दिए जाते। अभी ये जो पूरा इसके नरक के नीचे फिर हमारे शेष नाग है, उसके कितने फन है, 1000 फन है, 1000 फन है शेष नाग के। और फिर एक फन पे ये हमारा जो ब्रह्मांड है ना, एक ऐसा डाळिंबी के जैसा है शेषनाग। फिर शेषनाग के नीचे फिर भगवान के कुर्म अवतार लिया है, कुर्म देवता है ना, फिर वो शेष कुर्म देवता के ऊपर शेषनाग है। फिर शेषनाग के ऊपर जो भूमंडल का हिस्सा है ना, ऐसा एक भुयार जैसा है ना, उसमें ये सब 7 लोक आते हैं। फिर भूमंडल है छतरी के आकार का है ना, तो छतरी का बीच का डंडा है ना, थोड़ा ऊपर आता है ना, वो है माउंट मेरू। और ये सबसे आखिरी वाला जो पर्वत है, वहां से फिर सूर्यदेव का रथ चलता है ना। और ये जितने भी ये मैंने वर्ष बताया ना इधर, तो ये पहला है जम्बूद्वीप, फिर प्लक्षद्वीप ऐसा, फिर यज्ञबाहु, तो ये अलग अलग द्वीप है ना। तो ये प्रियव्रत महाराज का जो रथ था, तो इससे ये बने हैं। भागवत में आता है कि प्रियव्रत महाराज जब ये भूमंडल पे आए थे, तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी ठीक समतल नहीं है, तो उनके रथ से ये 7 द्वीप और 7 सागर उधर उन्होंने बनाए हैं। अभी उनका रथ कितना बड़ा होगा, वो जिन्होंने प्रियव्रत महाराज का रथ, ये कितना बड़ा होगा और कितने शक्तिशाली होंगे। अभी हम ये भागवतम की जब कथा सुनते हैं ना, हमें विश्वास नहीं होता ये क्या भागवत में दिया है, इतना लाख योजन है ना, रथ के पहिए से द्वीप बन गए, सागर बन गए, तो हमको विश्वास होता है कि इस पे नहीं होता विश्वास। लेकिन ये सच है 100%, क्योंकि ये भागवतम और भगवद्गीता के जो श्लोक होते हैं ना, इसका कोई तो राइटर है कि नहीं, किसी ने तो इसको लिखा है। अभी भागवतम किसने लिखा है हमको पता है, किसने लिखा है, व्यासदेव जी ने लिखा है। और भगवद्गीता किसने लिखी है, गणेश जी ने लिखी है। एक्चुअली भगवद्गीता इज पार्ट ऑफ महाभारत, महाभारत का एक हिस्सा है भगवद्गीता। और व्यासदेव जी ने महाभारत किसको बताया, गणेश जी को बताया, और गणेश जी ने अपने पेन से लिखा है। और ऐसा नहीं कि ऐसे ही लिखा, समझ के लिखा है, वो कथा आपको पता है ना, तो पूरा समझ के लिखा है। तो इसके राइटर गीता और भागवत के एक्चुअली व्यासदेव जी है ना। और 5000 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण थे इधर, तो वहाँ व्यासदेव जी भी थे ना, ठीक है नहीं। तो व्यासदेव जी ने भगवान का दर्शन किया है, भगवान से बातें की है ना, भगवान से प्रेम का संबंध है, तो वो तो भगवान श्री कृष्ण की शक्तिविश अवतार है ऐसा बोला जाता है, महान भक्त है भगवान श्री कृष्ण के। और उनके पास इतना शक्ति दी थी कि वो जो दिव्य दृष्टि होता है ना, वो संजय को भी दिया था उन्होंने, जो युद्ध चल रहा था महाभारत का, तो हमें पता है कथा कि उन्होंने अपना दिव्य दृष्टि संजय को ही दी थी। तो अपने को तो, उनको तो दिव्य दृष्टि होंगी ना, जो दूसरे को दिव्य दृष्टि दे सकते हैं, तो उनको तो दिव्य दृष्टि होगा ही ना, वो किधर का भी देख सकते थे। तो ऐसे महान ऋषि के पेन से जो ये श्लोक लिखे है गए हैं, तो उन्होंने क्या हमको भ्रमित करने के लिए लिखा होगा क्या, तो उनके ऊपर हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए ना, है कि नहीं। और ये ब्रह्मांड का जब भी मैंने अभी वर्णन मैंने बताया, तो ये कितना मिरेकल जैसा है ना, चमत्कारिक जैसा है कि नहीं। तो ये जैसे अगर कोई एक छोटा मच्छर होता है ना, तो बहुत साइज छोटा है ना, उससे भी मच्छर से भी छोटे बहुत से जीव कीटाणु इस जगत में है। फिर भगवान ने उसके अंदर लीवर कितने साइज का बनाया होगा, बहुत छोटा। अभी ये मच्छर ही इतना है तो उसके अंदर लीवर क्या साइज का होगा, है ना, और उसके अंदर बाकी किडनी अभी कि शरीर में कितने पार्ट होते हैं, तो कितने कितने साइज के बनाए होंगे। और हाथी का जो शरीर होता है ना वो तो बड़ा होता है, तो उसका लीवर कितना बनाया होगा, है ना। तो ये भगवान सबकी इधर ये लोकालोक पर्वत का साइज वो किस लिए बना है, हर हर के लिए कोई कारण है ना, ऐसे नहीं कि ऐसे ही बनाया है ना भगवान ने। तो ऐसा एक कथा आता है कि एक व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठा था और एक सामने जो है ना एक वेली था, वो तरबूज रहता ना बहुत बड़ा, और वो बैठा था जिस पेड़ के, वो जामुन का पेड़ था। तो देख सोच रहा था कि भगवान को बुद्धि नहीं है, ये इतना छोटा वेली है और तरबूज इतना बड़ा फल उसको दिया है, और इतना बड़ा वृक्ष है जामुन का और उसका फल साइज कितना है, छोटा है। ऐसा ही सोच रहा था तो ऊपर से एक जामुन टपका और उनके इधर गिर गया माथे पे, तो उनको लग गया ना एक जामुन ऐसा ऐसा साइज का गिरा, तो फाट करना और सर पे लगा। फिर सोचने लगा नहीं नहीं भगवान बहुत होशियार है करके वो सोचने लगा, अगर यही टर्बूज हो जाता गिरता मेरे माथे पे तो क्या होता। तो जो भी भगवान अगर उसके माथे पे टर्बूज गिरता तो ऊपर से तो उसका स्वाह हो जाता ना। तो उस तरह वो सोचने लगा कि नहीं जो भी भगवान ने इस ब्रह्मांड में बनाया है, क्योंकि हमारा दिमाग क्या है, हाँ भगवद गीता में प्रभुपाद बोलते हैं ना एक मेढक होता है ना, तो वो क्या सोचेगा ना, और एक इंसान का बुद्धि जो कितना है और भगवान का बुद्धि बहुत है ना, उसमें बहुत फर्क है ना। तो ये जो भौतिक ब्रह्मांड है ना सब हम चर्चा कर रहे थे, तो इधर कौन आता है, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को भूल गए हैं ना, और अपने जो अपना जो स्थान है वहां से भ्रष्ट हो चुके हैं ना, वो जीव इधर भौतिक ब्रह्मांड में आते हैं। मतलब हमारा स्वरूप क्या है, जीवेरे स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास, लेकिन जो जीवात्में अपने स्थान से भ्रष्ट हो चुके हैं और भगवान से स्वतंत्र होके भोग करना चाहते हैं ना, जो अत्यंत पापी है, तो ऐसे लोग इधर आते हैं, है ना। और फिर इधर आने के बाद क्या करते हैं, तो फिर कभी सुअर का जन्म, कभी कुत्ते का जन्म, तो हर जन्म में वो सुखी होने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण से दूर हो चुका है, माया में है और अपने जो स्थान है वहाँ से भ्रष्ट हो चुका है, तो ऐसे लोग इधर आते हैं इस भौतिक ब्रह्मांड में। और ये भौतिक ब्रह्मांड को प्रभुपाद ने जेल बोला है, और वो जो भूमंडल का जो लोकालोक पर्वत है ना वो एक्चुअली जेल ही है। लोकालोक पर्वत बहुत भयानक है, तो पूरा जो भूमंडल है ना तो वो उसका बाहर वो लोकालोक पर्वत, मतलब हमारा येरोड़ा का जेल होता है ना, तो जेल के बाहर ये होता है ना वाल होती है, तो उस तरह वो लोकालोक पर्वत है। और वो ब्रह्मांड का भी कवभर होता है, उसको सात आवरण होते हैं, तो ब्रह्मांड के सात आवरण कौन तोड़ सकता है, वो खतरनाक जेल है ये भौतिक जो ब्रह्मांड है, जो खतरनाक जेल है। और इधर जो है ना वो ऐसे जीव आते हैं जो अपने स्थान से भ्रष्ट हो चुके हैं, और इधर सुरक्षित स्थान ढूंढने का प्रयास करते हैं। हम हर जन्म में आते हैं और सुरक्षित कोई स्थान ढूंढने का प्रयत्न करते हैं इधर, लेकिन सुरक्षित स्थान हमको मिलता है क्या, नहीं मिलता। कुत्ते के जन्म में, सुअर के जन्म में, हर जन्म में जाओ, लेकिन हम ढूंढते कि सुरक्षित स्थान नहीं मिलेगा इधर, है ना। तो ऐसे जीव इधर इस भौतिक ब्रह्मांड में आते हैं। और दूसरे एक जीव होते हैं ना जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में हमेशा रत होते हैं, है ना, तो उनका जीवन, उनके कर्म सफल है। और जो जीव इस पूरे ब्रह्मांड में आते हैं ना, तो उस ब्रह्मांड में जितने भी जीव है उनके सब कर्म होते हैं सब व्यर्थ है, है ना, सब व्यर्थ है। इस भौतिक ब्रह्मांड में कुछ गिने चुने भक्तों को छोड़ के जो शुद्ध भक्त है ना उनके कर्म, प्रभुपाद गुरु महाराज ऐसे भक्त, नहीं तो थोड़े सीनियर भक्त है, उनके कर्मों को सफल बोला है। और बाकी सब लोगों के कर्म कैसे हैं, व्यर्थ है। मतलब एक बेड़ू क्या कर्म कर रहा है और उसको क्या यूज होने वाला है दूसरे को, है ना। वो एक मेंढक होता है ना, वो क्या कर्म करता है पूरा जिंदगी? एक कुत्ता क्या कर्म करता है? मनुष्य भी अगर भक्ति नहीं कर रहा है, सेवा नहीं कर रहा है ना, जो भागवत में बोला है ना, इसमें महाभारत में जो बोला है ना, आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य मेता पशु भी नरानम धर्मे न ही न पशु भी समान, ऐसा जो श्लोक है ना, इसमें क्या है, एक हम भी वही कर रहे हैं पशु के समान, आहार निद्रा भय मैथुन वही कर रहे हैं, तो हमारा कर्म क्या है? वो सब व्यर्थ है। इस भौतिक ब्रह्मांड में, इस जेल में भौतिक ब्रह्मांड के जितने भी जीव आते हैं वो सब व्यर्थ के कर्म करने, उनका आशा भी व्यर्थ है और उनका ज्ञान भी व्यर्थ है ना, सब व्यर्थ है भौतिक जगत में। लेकिन भक्तों के जो कर्म होते हैं वो सफल कर्म है, जो हमेशा भगवान की सेवा में जो रत है ना, तो उनके कर्म होते हैं ना वो सफल है। भले ही भौतिक ब्रह्मांड भी रहने दो, भगवान श्री कृष्ण क्या बोला है, मैं अध्यक्ष न प्रकृति सुयते सुचराचर, अध्यक्ष, अध्यक्ष ये शब्द का अर्थ है, ये अध्यक्ष शब्द जो बना है ना, अध और अक्ष दो शब्द आते हैं अध्यक्ष शब्द में, अध मतलब नीचे और अक्ष मतलब नेत्र, तो ये पूरा भौतिक ब्रह्मांड है ना भगवान श्री कृष्ण के नेत्र के नीचे आते हैं, मतलब भगवान श्री कृष्ण का पूरा कंट्रोल है इस भौतिक ब्रह्मांड के ऊपर, है ना। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रूप में सबके हृदय में है, अनुरेणु में भगवान है और गोलोक धाम में भी भगवान है, तो इस पूरे ब्रह्मांड पे भगवान श्री कृष्ण का पूरा कंट्रोल है। ये भौतिक प्रकृति है ना, एक स्त्री है, भौतिक प्रकृति क्या है, स्त्री है। तो प्रभुपाद बोलते जितने भी साइंटिस्ट लोग है तो बोलते सब प्रकृति से पैदा हुआ है, प्रकृति से पैदा हो गया है, तो प्रकृति जो है एक स्त्री है। अगर जिस तरह पुरुष है ना स्त्री के गर्भ में ये करके बच्चा पैदा होता है, उस तरह जब भगवान कारणोदक्ष विष्णु जो है ना, महाविष्णु इस भौतिक प्रकृति पे अपना दृष्टि डालते हैं, तो पूरा प्रकृति ये जितना भी ब्रह्मांड मैंने बताया ना, इसमें जीव को गर्भस्थ होते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनका टीका में बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बहुत दिव्य है, बहुत शुद्ध है, वो तो गोलोक धाम में रहते हैं, लेकिन उनके अंश के अंश कारणोदक्ष विष्णु जिनको महाविष्णु भी बोला जाता है, उनकी दृष्टि से ये भौतिक प्रकृति गर्भस्थ होती है। महाविष्णु की दृष्टि से भौतिक प्रकृति गर्भस्थ, भगवान कृष्ण तो उसका स्पर्श भी नहीं करते ना, तो दृष्टि डालते उनके ऊपर प्रकृति पर। प्रकृति तो भगवान कृष्ण, ये माया प्रकृति जो है ना, भगवान कृष्ण के सामने जाने की भी सामने जाने के लिए भी लज्जा का अनुभव करती है भगवान श्री कृष्ण के सामने, ये भौतिक प्रकृति। और उस भौतिक प्रकृति में हम है, और हमारा कर्म क्या है, सब व्यर्थ कर्म है ना, है ना। तो इस तरह ये जो श्लोक है ना, ये श्लोक में बताया है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारे आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए हमें हमारे गुरु के चरणों का हमें आश्रय लेना चाहिए। तो भागवतम में एक कथा आता है ना गजेंद्र का, तो गजेंद्र को जो एक उनका पैर किसने पकड़ा था, मगरमच्छ ने पकड़ा था। तो जब ये कथा का जो टीका चल रहा था, तो बहुत से भक्तों ने पूछा कि ये जो गजेंद्र पहले जन्म में इंद्रदुम्न नाम के महाराज थे ना गजेंद्र, तो सब महान भक्त थे गजेंद्र, तो उन्होंने तपस्या की थी, साधना की थी, तो जब उन्होंने पुकारा भगवान श्री कृष्ण को, तो भगवान श्री कृष्ण आए गरुड़ पे, और पहले किसका उद्धार किया, मगर का उद्धार किया। तो ऐसा पूछा जाता है कि मगर ने तो कुछ भी नहीं किया था ना, वो ना तो तपस्या किया ना साधना किया, कुछ भी नहीं किया था, फिर पहले उद्धार किसका हो गया, मगर। तो प्रश्न किया, अरे इसने तो कुछ भी नहीं किया, फिर इसका कैसे, अभी जिसके भी भगवान के हाथ से जिसका भी उद्धार हो जाता है ना, तो वो तो उसको मुक्ति प्राप्त होता है, उसको उसका उद्धार हो जाता है ना, तो उसने कुछ भी नहीं किया फिर भी उसका कैसे उद्धार हो गया, उद्धार गजेंद्र का होना चाहिए, ठीक है, फिर मगर का भी हो गया ना, ऐसा क्यों, ऐसा प्रश्न पूछा ना। तो उसका उत्तर हमारे आचार्य लोग बताते हैं कि जो शुद्ध भक्त है ना, उसके चरण पकड़े थे उन्होंने, घट छोड़ा ही नहीं। गजेंद्र कौन था, एक शुद्ध भक्त था ना, पहले के जमाने में कौन, पहले के जन्म में कौन था, इंद्रदुम्न नाम महाराज था। और गजेंद्र ने क्या था, उनके चरणों को पकड़ा था, छोड़ा ही नहीं। तो इस तरह हमें क्या करना चाहिए, हमारे गुरुओं को चरणों को पकड़ना चाहिए मगर की तरह, तो छोड़ना ही नहीं। पूरा हमारा आध्यात्मिक प्रगति जो है ना, गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद से हमारा होता है। तो गुरु के आशीर्वाद का जो कवच लेके हमें घूमना चाहिए। जब तक तो गुरु हमको दीक्षा नहीं देते, हमें आशीर्वाद नहीं देते, हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, हमारे गुरु महाराज के चरणों का, श्रील प्रभुपाद के चरणों का हमें क्या करना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए, तभी हमें आध्यात्मिक प्रगति हम कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेद गौर भक्त वृंद की जय।